अथर्ववेदीय ब्राह्मण भाग की प्रश्नोपनिषद का विचार इस सत्र में प्रारंभ हुआ। मुंडक उपनिषद के व्याख्यान रूप प्रश्नोपनिषद में सुकेश आदि छह ऋषि आचार्य पिपला जी के पास जाते हैं, उन्हें अपनी जिज्ञासा बताते हैं और उनकी जिज्ञासा शांत करने के लिए उनके द्वारा किए गए प्रश्नों का उत्तर आचार्य पिपला जी देते हैं। इत्याकारक जो आख्यायिका है, कथा है, यह कथा है प्रश्नोपनिषद प्रतिपाद्य जो विद्या है उसकी प्रशंसा के लिए। विद्या की प्रशंसा जब होगी तो जिज्ञासु विद्या जिस ग्रंथ से प्राप्त होती है उस ग्रंथ के अध्ययन में प्रवृत्त हो जाएगा। मनुष्य का स्वभाव है, जिसकी महत्ता सुनता है चाहता है वह हमारे पास आ जाए, वो साधन हमें मिल जाए। इसलिए प्रशंसा का भी बड़ा उपयोग होता है। साधन विषयक उत्कट इच्छा उत्पन्न करने के लिए तो इसी उद्देश्य से यहां आख्यायिका भी है और आख्यायिका के अनुसार सुकेश सत्यकाम गार्ग्य कौशल्य भार्गव और कबंध नाम के छह ऋषि ऐसे हैं जो अपर ब्रह्म को ही परब्रह्म के रूप में समझ बैठे हैं और अपर ब्रह्म के ही चिंतन में संलग्न है। अपर ब्रह्म की उपासना करने वाले को उसकी वह उपासना जब परिपूर्ण हो जाती है तो ईश्वरीय व्यवस्था के अनुसार उपासना का फल परब्रह्म की जिज्ञासा मन में प्रकट हो जाती है। तो ये छह के छह ऋषि ब्रह्म पर हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं का अर्थ है अपर ब्रह्म को पहले सर्वोत्कृष्ट मान करके उसकी उपासना में रत है, ब्रह्मनिष्ठ है का अर्थ है उपासना कर रहे हैं और उनकी वह उपासना परिपक्व हो गई तो उनके अंदर परब्रह्म की जिज्ञासा हो गई। कोई विद्यार्थी एक वर्ष तक किसी कक्षा का निर्धारित जो कोर्स है उसका ठीक ठीक अध्ययन कर लेता है, परिश्रम करके और परीक्षा में उत्तर लिख लेता है। अध्ययन यदि ठीक किया है वर्ष भर तो जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनके उत्तर लिखने में उसे कोई कठिनाई नहीं होगी और वो पास होगा ही। तो पास होगा तो उसी कक्षा में बैठने का अधिकारी नहीं रहेगा, उससे आगे वाली कक्षा का वो अधिकारी हो जाता है। ऐसे ही जो कर्म उपासना करके शुद्ध चित्त वाले हो जाते हैं, समाहित चित्त वाले हो जाते हैं, तो शुद्ध तथा समाहित चित्त में परब्रह्म को जानने की इच्छा हो जाती है, परब्रह्म जिज्ञासा हो जाती है। इसलिए यहां पर एक विशेषण बताया गया कि परम ब्रह्म अन्वेषमाना, ये छह के छह ऋषि पर ब्रह्म का अन्वेषण कर रहे हैं, का मतलब पर ब्रह्म जिज्ञासु बन गए हैं, पर ब्रह्म का बोध प्राप्त करना चाहते हैं। तो विद्यार्थी देखता है जब हाई स्कूल में अच्छे नंबर लेकर के पास हो गया तो चाहता है कि अच्छे से अच्छे कॉलेज में उसे एडमिशन मिल जाए, जो प्रसिद्ध कॉलेज हो। ऐसे ही इन छह ऋषियों के अंदर परब्रह्म जिज्ञासा हुई तो परब्रह्म की शिक्षा जिस गुरुकुल में दी जाती है, चाह रहे हैं उस गुरुकुल में एडमिशन मिल जाए, प्रवेश मिल जाए, और परब्रह्म के अध्यापक के रूप में, आचार्य के रूप में बड़ी प्रसिद्धि थी आचार्य पिपलाद जी की, बहुत प्रसिद्ध थे उस समय, सब लोग जो ट्यूशन पढ़ाने वाले अध्यापक के विद्यार्थी अच्छे नंबर से परीक्षा में पास हो जाते हैं तो उनके पास ट्यूशन के लिए लाइन लग जाते हैं, चाहते हैं कि इनसे हम पढ़ लें तो हमारे भी उनके तरह ही नंबर आ जाएंगे, हम भी टॉप कर लेंगे। अभी पिछले वर्ष का रिजल्ट आया 12वीं का, जो वो आजकल के कोर्स भी कई एक है ना, तो इंटरनेशनल वाला जो था भारत में भी चलते हैं, तो यहां कांदीवली में एक लोहाना परिवार रहता है, भारत में वो दूसरे नंबर पर आया 12वीं में, पहले नंबर का कोई कलकत्ता वाला है। और फिर उसके माता पिता बताने लगे, यानी उसके नंबर हैं 99.25, केवल तीन नंबर कटे हैं उसके, बाकी पूरे नंबर आए हैं। तो वो जिनके पास ट्यूशन पढ़ता था उन्होंने इनको पूछा कि हम अपने प्रचार प्रसार के लिए इसका नाम दे क्या, ये भी हमारे पास पढ़ता था करके कहा दिया, तो उसकी फीस बढ़ गई, तीन गुना हो गए कहते हैं। तो ऐसा होता है ना, तो ऐसे ही उस समय आचार्य पिपलाद जी परब्रह्म विद्या के प्रख्यात आचार्य थे, बड़ी प्रसिद्धि थी उनकी, इसलिए ये सब के सब परब्रह्म की जिज्ञासा से संपन्न सुकेश आदि ऋषि आचार्य पिपलाद जी के पास आते हैं। इसलिए कहा भगवंतम पिपलादम उपसन्ना, जो परब्रह्म विद्या का उपदेश करने में समर्थ है ऐसे आचार्य पिपलाद जी के पास विधिवत आए। क्या समझ करके आए, तो कहे ये सहवै तत्सर्वम वक्षति इति, ये आचार्य पिपलाद जी हम जिसे जानना चाहते हैं वो सब बताएंगे, इस उद्देश्य से आचार्य पिपलाद जी के पास आए। और अपने पास आए हुए जिज्ञासु को वेद बताता है ब्रह्म विद्या के आचार्य को चाहिए कि जिससे उसकी जिज्ञासा शांत हो, ऐसा उपदेश करें अपने पास में रख करके। तो आचार्य पिपलाद जी भी वेद भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए आए हुए छह ऋषियों को आदर से अपने पास रखते हैं, लेकिन ये नहीं कि आए और तुरंत ही जो जानना चाहते हैं वो बिना योग्यता निर्धारण किए ही बता दें। वो तो फिर उल्टे घड़े पर बारिश होना जैसा हो जाएगा। इसलिए आचार्य पिपलाद जी उन्हें जो बताते हैं वो द्वितीय कंडिका में श्रुति बता रही है। तान ह स ऋषि वाच भूय एव तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संवत्सरम संवत्स्यथ यथा कामं प्रश्नान् पृच्छत यदि विज्ञास्याम सर्वं ह वो वक्षाम इति। अपने पास विनय पूर्वक शास्त्र जैसा बताता है ऐसे आए हुए सुकेश आदि ऋषियों को आचार्य पिपला जी ने कहा। स ऋषि वाच क्या कहा? तो कहा यद्यपि आप लोग पहले से तपस्वी हो और विद्या अध्ययन करने के लिए पहले गुरुकुल में वास कर चुके हो और आपके अंदर श्रद्धा भी है, तो भी अभी हमारे गुरुकुल में जिस विद्या को प्राप्त करना चाहते हो उस विद्या को प्राप्त करने के लिए आपको एक वर्ष तक निवास करना पड़ेगा, प्रतीक्षा सूची में रहना पड़ेगा। बहुत ज्यादा प्रसिद्ध जो कॉलेज आदि होते हैं तो उसमें जो जाए तुरंत ही एडमिशन मिले ऐसा तो नहीं होता ना, प्रतीक्षा करनी होती है। कहते हैं हम आपको आपके जिज्ञास्य अर्थ को यथामति बताएंगे, लेकिन पहले जैसे आप अपर ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए वेद अध्ययन के समय गुरुकुल में रहें ऐसे और एक वर्ष रहो यहां। भूय एव तपसा, और यहां तप है ब्रह्म विद्या, पर ब्रह्म विद्या के अनुकूल तप, वो पर ब्रह्म विद्या के अनुकूल तप है इंद्रियों का और मन का निग्रह, एकाग्रता। तो इंद्रिय तथा मन की एकाग्रता रूप तप करते हुए एक वर्ष यहां पर निवास करो, और साथ ही साथ ब्रह्मचर्य से निवास करो। ब्रह्मचर्य है गुरुकुल में रहते समय अतिथि बनकर के नहीं रहना होता, पहले आश्रमों में कहीं कुछ वेतनधारी सेवक नहीं रहा करते थे, जो गुरुकुल में यानी आश्रमों में निवास करने वाले साधक लोग हैं, जिज्ञासु लोग हैं, वही सब कार्य करते थे। यहां तक कि वो भगवान कृष्ण भी संदीपनी ऋषि के यहां रहे तो वो लकड़ी आदि लेने के लिए स्वयं ही जाते थे ना, भागवत कथा के माध्यम से सुनते ही गए। भगवान राम भी यानी चाहे राजा के पुत्र हो या गरीब के पुत्र हो, सभी के सभी को जो आश्रम में होने वाले कार्य हैं उन कार्य को बांट करके करना हुआ करता था। तो ऐसे ही ब्रह्मचर्य का अर्थ ही होता है कि गुरुकुल में रहते समय ब्रह्मचारी अवस्था में गुरुकुल के जो भी कार्य हैं उन कार्यों का संपादन करते हुए रहना है। ये नहीं कि घंटी कब लगेगी, चाय कमरे में कब पहुंचेगी, इसकी प्रतीक्षा करते हुए रहे, ऐसा नहीं होता है। ये तो देवराज इंद्र और असुर राज विरोचन आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रजापति के आश्रम में जाता है ना, तो गए तो कहते हैं 32 वर्ष पहले न तो कोई बात की उन्होंने प्रजापति ने इंद्र से और विरोचन से, न कुछ किया, न जाते कोई कमरा खोला। उन्होंने अपनी पर्ण कुटियाएं बनाई और अपने ही खाने पीने की व्यवस्था स्वयं करते रहे और आश्रम की सेवा करते हुए 32 साल बिताए। उसके बाद प्रजापति ने पूछा इंद्र को और विरोचन को, क्या आप कौन हो और किस लिए यहां निवास कर रहे हो? तब जाकर के उन्होंने बताया आत्मज्ञान के लिए हम आपके पास आए हैं, तो उपदेश किया। एक बार में इंद्र को समझ में नहीं आया, दूसरे बार में नहीं, तीसरे बार में नहीं, ऐसे चार पर्याय में उपदेश किया 101 वर्ष। और बार बार आते रहे, तीन बार तो 32-32 वर्ष रहे और चौथी बार 5 वर्ष रहने के लिए कहा। ऐसे 101 वर्ष रहे तो कोई सुविधा देकर के नहीं रखा, अपने जीवन के लिए अन्न पान आदि की व्यवस्था स्वयं करनी है और आश्रम की सेवा करनी है, साथ साथ में जो पढ़ाया जा रहा था उसका चिंतन करना है, ऐसे रहते थे। ये सब कार्य करते हुए रहने का नाम है ब्रह्मचारी का कर्म, ब्रह्मचर्य कहलाता है। और वो ब्रह्मचारी का कर्म होता है सेवा शुश्रूषादि, वो करते हुए निवास करो 1 वर्ष। वो सारे कर्म और उपासनाएं करके अधिकारी बन करके गए हुए हैं, तब भी उनको कहा जा रहा है कि ऐसे 1 वर्ष तक रहो और मजबूरी में नहीं रहना। साथ में भी कहा बड़ी भक्ति भाव के साथ श्रद्धा के साथ रहना, इसलिए श्रद्धया तो 3 विशेषताएं बताई। श्रद्धा से रहो लेकिन बिना कुछ किए नहीं रहना, ब्रह्मचर्य के साथ रहो का मतलब ब्रह्मचारी का जो कर्म है सेवा शुश्रूषा आदि वो करते हुए रहो। और जब चाहे जो चाहे मन करे और जीवा मांगे वो खाते हुए नहीं रहना है, तपस्या करते हुए रहना है। समय समय पर जो आश्रम में मिलेगा वो प्रसाद समझ करके खाते हुए रहना है, तब तो तपस्या मानी जाएगी, मन और इंद्रिय का निग्रह। ऐसे 1 वर्ष तक निवास करो और उसके बाद फिर कहते हैं यथा कामम प्रश्नान पृच्छत, फिर आप 6 लोगों को जो इच्छा हो जानने की, जिस पदार्थ को जानने की इच्छा है उस पदार्थ विषयक अपने इच्छा के अनुसार प्रश्न करो और उसका उत्तर यदि हमें आता है तो देंगे। तो ये कहते हैं यदि विज्ञास्याम, यानी हम आपने पूछे हुए अर्थ को जान लेंगे, यानी हमें जानकारी है ज्ञान है तो बता देंगे, ऐसा एक अर्थ निकलता है। का मतलब फिर मान लो कि प्रश्न यानी जिस अर्थ को ये जानना चाहते उस अर्थ विषय किया और 1 वर्ष तक सेवा लेने के बाद ये कहें कि ये आपने जो पूछा है इस अर्थ को हम नहीं जानते हैं और किसी के पास जाओ, तो एक वर्ष की सेवा आदि ये सब ऐसी चली जाए, ये नहीं। तो भाष्कर भगवान ने ये कहा कि यदि शब्द का वो अर्थ नहीं निकालना, यदि शब्द है आचार्य पिपला जी की इतनी प्रसिद्धि है, उनके पास आए हैं का अर्थ है कि वो सब जानते हैं, क्योंकि उनको पहले ही कहा ना कि ये सवय तत्सर्वम वक्षति, हम जिसको जानना चाहते हैं वह आचार्य पिपला जी बता सकते हैं, उनके अंदर सामर्थ्य है, ऐसा इनको निश्चय है। तो भी आचार्य पिपला जी कह रहे हैं यदि मैं जानूंगा तो बताऊंगा का अर्थ है आचार्य पिपला जी अपने निराभिमानिता को प्रकट कर रहे हैं, उनको अपने विद्या का अभिमान नहीं है, अभिमान को प्रकट नहीं करना चाहता है ही नहीं अभिमान उनके अंदर, तो निराभिमानिता दिखाने के लिए यदि शब्द है। और सर्वम ह वो वक्षाम, वह यानी आप लोगों के द्वारा जो प्रश्न किए जाएंगे उनके उत्तर हम देंगे आप लोगों के लिए। आचार्य पिपला जी ने एक प्रकार से इस प्रकार का आश्वासन दिया रहने का, तो इन्होंने ये नहीं सोचा कि एक वर्ष तो बड़ा लंबा समय होता है, उन्होंने सोचा आत्मज्ञान के लिए ब्रह्म ज्ञान के लिए तो भगवान ने कहा है बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद देते, कई कई जन्म बीत जाते हैं तब जाकर के आत्मज्ञान प्राप्त होता है। इंद्र को भी 101 वर्ष रहना पड़ा और हमको तो मात्र आचार्य पिपला जी एक वर्ष मात्र कह रहे रहो, तो ये तो बड़ा सस्ता सौदा है, उन्होंने तुरंत ही स्वीकार कर लिया। और एक वर्ष तक जैसा आचार्य पिपला जी ने कहा वैसे ही रहे, तपस्या ब्रह्मचर्य और श्रद्धा के साथ। एक वर्ष बीतने के बाद जो 6 ऋषि बताए थे ना, उनका जो क्रम है, पहले हैं सुकेश ऋषि, दूसरे हैं सत्यकाम, तीसरे हैं गार्ग्य, चौथे हैं कौशल्य, पांचवे हैं भार्गव और छठवे हैं कबंधी नाम के ऋषि। प्रथम मंत्र में सब उनका क्रम आया है, लेकिन प्रश्न करते समय उल्टा क्रम है, छठवे ऋषि पहले पूछेंगे, पांचवे दूसरे नंबर पर आएंगे, चौथे तीसरे नंबर पर आएंगे। तो कबंधी ऋषि एक वर्ष के बाद में आकर के आचार्य पिपला जी से प्रश्न करते हैं, वो प्रश्न बताया जा रहा है तीसरे मंत्र में। अथ कबंधी कात्यायन उपेत्य पप्रच्छ भगवन कुतो हवा इमाह प्रजा प्रजायन्ते इति। तो अथ शब्द का अर्थ है एक वर्ष के पश्चात, साधना में एक वर्ष बिता दिया, फिर 6 ऋषियों में से कत्य के गोत्र में उत्पन्न हुए कबंधी नाम के ऋषि ने आचार्य पिपला जी के पास विनयपूर्वक आकर के उनसे पूछा। तो अकेले ही आए और बाकी 5 नहीं आए ऐसा नहीं, तो रोज जिस स्थान पर वे बैठते थे उनके स्वाध्याय कक्ष में, तो 6 के 6 ऋषि आए, प्रतिदिन ही मिलते थे, प्रणाम आदि करके क्या करना है इसकी आज्ञा लेते थे। तो एक वर्ष के पश्चात फिर जब आए तो 6 के 6 7 में जहां स्वाध्याय कक्षा में बैठे थे, स्वाध्याय कक्ष में आचार्य पिपला जी, वहां पर आचार्य पिपला जी ने 6 ऋषियों को कहा बैठने के लिए, तो बैठे। और फिर कबंधी नाम के ऋषि ने आचार्य पिपलाद जी को प्रसन्न मुद्रा में देख करके तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया के अनुसार प्रसन्न चित्त देखा। एक वर्ष का समय भी बीत गया तो प्रश्न किया उनकी अनुमति लेकर के। बाकी पांच ऋषि भी बैठे हुए हैं, सबके सब एक साथ ही रहते थे, और प्रश्न किया कि हे भगवन, इमा प्रजा कुतः प्रजायन्ते, ये जो प्रजा है यानी मनुष्यादि हैं सारा संसार, ये किससे उत्पन्न होता है? संसार का यानी स्थूल शरीरों का उत्पादक कौन है, ये पूछा। प्रजा शब्द से स्थूल शरीरों को लेना और इन स्थूल शरीर किससे उत्पन्न होते हैं, इसे उत्पन्न करने वाला कौन है, ये प्रश्न हुआ। संसार के उत्पादक के विषय में यद्यपि ये परब्रह्म जिज्ञासु है तो होना चाहिए प्रश्न ब्रह्म विषय को, जिसकी जिज्ञासा उस विषय का। तो कबंधी ने जो प्रश्न किया इससे तो लगता नहीं है कि ब्रह्म विषयक जिज्ञासा इनके अंदर है। ये स्थूल शरीरों की रचना कौन करता है, ये जो प्रश्न किया इससे तो लग रहा है कि ये स्थूल संसार का उत्पादन करने वाले अपर ब्रह्म विषय को प्रश्न कर रहे हैं, क्योंकि स्थूल संसार की उत्पत्ति करना ब्रह्मा जी का काम है, ब्रह्मा जी उत्पन्न करते हैं। लेकिन पहले बता चुके हैं कि ये जो छह प्रश्न हैं प्रश्नोपनिषद में, उनमें से तीन प्रश्नों के माध्यम से तो साध्य साधनात्मक संसार का वर्णन किया जा रहा है, जो मुंडक उपनिषद में अपरा विद्या है उसका फल तथा अपरा विद्या का उपासनात्मक जो एक अंश विशेष है उसका वर्णन करना है, इसलिए तीन प्रश्न है। पहले प्रश्न के माध्यम से अपरा विद्या के फल का वर्णन होना है, संसार का वर्णन होना है। संसार का वर्णन होने से और उसके प्रापक साधन का वर्णन होने से उसमें जो विद्यमान दोष हैं वो दोष दिखेंगे तो ब्रह्म विद्या के अधिकारी में अपर विद्या के फल के प्रति वैराग्य होगा संसार के प्रति, और वैराग्य जिसके चित्त में संसार के प्रति है वही परब्रह्म विद्या का अधिकारी माना जाता है मुख्य। इसलिए अथातो ब्रह्म जिज्ञासा में अथ शब्द का अर्थ ही है साधन चतुष्टय संपत्ति के अनंतर, और साधन चतुष्टय में मुख्य साधन है विवेक वैराग्य। तो वैराग्य संपन्न व्यक्ति का ही परब्रह्म विद्या में अधिकार है, ये दिखाने के लिए यहां अपर विद्या के फल विषयक प्रश्न है कबंधी का। और इस कबंधी को और आचार्य पिपलाद जी को यहां पर प्रश्नकर्ता तथा उत्तर देता के रूप में श्रुति जो बता रही है उसका उद्देश्य तो है विद्या की प्रशंसा और मुख्य रूप से परब्रह्म का ससाधन सफल वर्णन करना है ना। तो परब्रह्म विद्या का साधन है वैराग्य, इसलिए वैराग्य का जिससे निरूपण हो ऐसा प्रश्न कबंधी नाम के ऋषि ने आचार्य पिपला जी से किया कि प्रजा का उत्पादक कौन है, किससे प्रजा उत्पन्न होती है। कबंदी के इस प्रश्न को सुनकर के आचार्य पिपला जी उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। इसलिए कहा चौथी कंडिका में कि तस्मै सहो वाच, तो स यानी आचार्य पिपला जी ने तस्मै यानी प्रश्नकर्ता कबंधी को कहा। क्या कहा? तो किससे प्रजा उत्पन्न होती है इस प्रश्न का उत्तर देना है। वो उत्तर कई कंडिकाओं में दिया जा रहा है। प्रजापति को प्रजा के उत्पादक के रूप में बताना है, लेकिन प्रजापति कौन है और कैसे वो प्रजा को उत्पन्न करता है ये सब बताना है ना। इसलिए प्रजा कामो वै प्रजापति ही स तपो अतप्यत स तपस्तप्वा स मिथुनम उत्पादयते रयिंच प्राणंच इति एतौ मे बहुधा प्रजा करिष्यत इति। इससे उत्तर देना प्रारंभ कर दिया। ये कहा कि एक प्रजापति है। प्रजापति शब्द का अर्थ होता है प्रजा के स्वामी। प्रजा यानी इस संसार के सदस्य सभी प्राणी 84 लाख प्रकार के, वो है प्रजा शब्द का अर्थ। और उनका पति यानी स्वामी नियंत्रक, तो इस संसार के नियंत्रक हैं, संसार के अध्यक्ष हैं हिरण्यगर्भ। इसलिए प्रजापति शब्द का अर्थ है हिरण्यगर्भ। और उन्हीं को प्रजा के उत्पादक के रूप में बताया जाएगा हिरण्यगर्भ को। उनका एक विशेषण है प्रजा काम। और ये प्रजापति बनता कौन है? प्रजापति है ईश्वर की प्रथम संतान हिरण्यगर्भ। और इस संसार में भगवान सबसे पहले प्रजापति का ही निर्माण करते हैं, उत्पन्न करते हैं उनको। इसलिए शांति मंत्र में कहा जाता है यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वे वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै। तो नारायण भगवान सबसे पहले ब्रह्मा जी को उत्पन्न करते हैं। विदधाति का अर्थ है उत्पन्न करते हैं, बनाते हैं, और बना करके फिर उनको वेद प्रदान करते हैं, वेद का उपदेश देते हैं, और फिर ब्रह्मा जी आगे की सृष्टि करते हैं वेदांत में सृष्टि क्रम के अनुसार। और वो ब्रह्मा बनता कौन है? तो उपनिषदों ने बताया अपर ब्रह्म की जो उपासना करते हैं अहंग्रह उपासना अपर ब्रह्म बनने के लिए। तो हरेक कल्प में सबसे पहले ब्रह्मा जी बनते हैं और वो भी 100 वर्ष तक जीते हैं। और ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु पूरी होते ही फिर उस कल्प का प्रलय हो जाता है, सृष्टि का महाप्रलय होता, नाश हो जाता है। और ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु मानी जाती है, उनका एक दिन है हमारे चारों युग 2000 बार आकर के बीत जाते हैं तो उनका 24 घंटा होता है। एक एक युग की आयु है। कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000। और द्वापर की उससे डबल 8,64,000। और त्रेता की है उसमें और 4,32,000 को जोड़ेंगे तो हो जाते हैं 12,96,000। और उसमें और जोड़ देते हैं 4,32,000 तो 17,28,000 हो जाती है उसकी आयु सत्ययुग की। और इन सबको जोड़ेंगे तो चारों युगों की आयु कितनी लाख हुई? 17,28,000 प्लस 12,96,000 प्लस 8,64,000 प्लस 4,32,000 इक्वल जितने होंगे, इतने वर्ष जब हमारे बीतेंगे तो 24 घंटे ब्रह्मा जी के हो जाते हैं, केवल 24 घंटे, और यानी एक दिन रात हुआ, और ऐसे 30 दिन रात बीत जाएंगे तो एक महीना, और ऐसे 12 महीने बीत जाएंगे उनके तो एक वर्ष, और ऐसे 100 वर्ष आयु ब्रह्मा जी की है। वो हरेक कल्प के ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु होती है उस दिन मान के अनुसार। इस कल्प के ब्रह्मा जी के 100 वर्ष में से आयु के कितने वर्ष बीत गए हैं? 50 बीत गए हैं, अभी आधी आयु बीत गई है, और महाप्रलय होने में ब्रह्मा जी के 50 वर्ष बाकी है, तब जाकर के सृष्टि का विनाश होगा, महाप्रलय होगा, उससे पहले तक कोई गुंजाइश प्रलय की नहीं। खंड प्रलय होंगे वो अलग बात, लेकिन बिल्कुल ही कुछ भी न रहे इसके लिए तो ब्रह्मा जी के अभी और 50 वर्ष, और ये 50 वर्ष में एक प्रकार से पहले दिन का पहला घंटा जैसा ही चल रहा है। अभी 51वें वर्ष के पहले दिन में सूर्योदय जैसा भी नहीं हुआ है उनका, ये 28वां कलयुग चल रहा है, का अर्थ है 28 बार ये चारों तीन युग आकर के बीत गए हैं उनके पहले दिन के। 1000 बार बीतेंगे तब 12 घंटा हो जाएंगे सूर्योदय से सूर्यास्त तक, तो अभी तो 28 सत्ययुग, 28 त्रेतायुग, 28 द्वापर युग बीत गए हैं, और ये 28वां कलयुग चल रहा है, और इस 28वें कलयुग का बचा है हुआ है मात्र 5130 के आसपास वर्ष पूरे, और बचे हैं 4,27,000 के आसपास कलयुग के 28वें। ऐसे 1000 बार बीत जाएंगे तो एक दिन पूरा होगा, और फिर और 1000 बार बीत जाएंगे तो दिन रात मिलकर के एक दिन 50वें वर्ष का पूरा हो जाएगा माना जाएगा। का मतलब अभी तो बहुत लंबी प्रतीक्षा करनी है महाप्रलय के लिए, इतनी जल्दी महाप्रलय होने वाला नहीं है। तो वो ब्रह्मा जी जब 100 वर्ष पूरे करते हैं तो महाप्रलय होता है, और ब्रह्मा जी तो मुक्त हो जाते हैं, वो ब्रह्म विद्या के आचार्य में भी है ना। जब आचार्य परंपरा का हम लोग नमस्कार करने के लिए पाठ करते हैं तो नारायणम पद्मभवम वशिष्ठम, पद्मभवम में यही ब्रह्मा जी है, हिरण्यगर्भ है। वो ब्रह्म विद्या संपन्न होने के कारण, निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान उनको होने के कारण मुक्त हो जाते हैं पहले वाले ब्रह्मा जी तो, और बाद में फिर दूसरा कल्प होना होता है सृष्टि, तो सभी जीव तो मुक्त नहीं होते ना उस कल्प में, जो जो मुक्त नहीं होगा उनका कर्म तो बना रहता है। तो अभी इस कल्प में जो नाश होने के बाद जो उत्पन्न होगा दूसरा कल्प, उसमें भी ब्रह्मा जी बनते हैं, यथा धाता पूर्वम अकल्पयत कहा जाता है, जैसे पहले था ऐसा ही सब कुछ उत्पन्न होता है, हिरण्यगर्भ भी बनते हैं, लेकिन वो पहले वाले हिरण्यगर्भ नहीं होते, वो तो मुक्त हो जाते हैं, और पहले कल्प में जितनों को निर्विशेष ब्रह्म विद्या प्राप्त होती है वो भी मुक्त हो जाता है, और जिनको ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ वो रहते हैं, और उनका जन्म होना होता है दूसरे कल्प में फिर। तो उनमें से जो मुक्त नहीं हो पाए थे एक जीव बन जाता है हिरण्यगर्भ। वो कौन सा जीव हिरण्यगर्भ बनेगा? ईश्वर किसको हिरण्यगर्भ बनाएंगे? किसका चुनाव होगा? संसार के अध्यक्ष के रूप में, पहले अध्यक्ष तो मुक्त हो गए, अब कौन आएंगे? तो उसके लिए अधिकार दिया जाता है ईश्वर को, कर्मफल विधाता वो है ना। तो ईश्वर किसको चुनेंगे? तो ईश्वर तो राग द्वेष रहित है, वो देखते हैं कि योग्यता किसमें है, योग्य व्यक्ति का वो चुनाव करते हैं। और योग्यता देखी जाती है उनके कर्म की। तो पूर्व कल्प में जिसने कर्म और उपासना का समुच्चय अनुष्ठान किया है, अपर ब्रह्म की पूर्व कल्प में हिरण्यगर्भ की अहंग्रह उपासना हिरण्यगर्भ बनने के लिए की है और उपासना पूर्ण भी हो गई उसकी, अहंग्रह उपासना हिरण्यगर्भ की। लेकिन पूर्व कल्प के जो हिरण्यगर्भ थे उनकी 100 वर्ष की आयु पूरी होने के कारण जो उपासक था, उनकी अहंग्रह उपासना करने वाला, उसने उपासना रूप साधना तो पूर्ण की, लेकिन उस कल्प में उस उपासना रूप साधना का फलोपभोग करने के लिए उस कल्प की कल्प का वो आयु शेष नहीं रही, समाप्ति हो गई। तो उस समय वो अविद्या में लीन हुआ उपासक, और बाद में जब दूसरा कल्प आता है पूर्व कल्प के प्रलय के बाद में बनना होता है, तो उसको उसके साधना का फलोपभोग कराने के लिए ईश्वर के अंदर संकल्प होता है सृष्टि करने का। तद ऐक्षत बहुश्याम प्रजायेय, ऐसा संकल्प हो जाता। वो कौन संकल्प कराता है? तो पूर्व कल्प में जिस वो आप जैसा, आप हम जैसा ही कोई एक मनुष्य विशेष होता है, वह हिरण्यगर्भ की हिरण्यगर्भ बनने के लिए अहंग्रह उपासना करता है। तो जिस मनुष्य ने मनुष्य शरीर में रह करके पूर्व कल्प में हिरण्यगर्भ बनने की साधना की थी लेकिन फल भोग नहीं पाया था, उसकी वो साधना जब फलोन्मुख होती है तो वह उसकी साधना ईश्वर के उपाधि में माया में एक संकल्प प्रकट कर देती है, ईक्षण हो जाता है बहुश्याम प्रजायेय ऐसा। और फिर ईश्वर तत्तेजो असृजत इत्यादि के अनुसार पंच अपंचकृत पंच महाभूतों को उत्पन्न करते हैं, सूक्ष्म सृष्टि बनाते हैं, और अपंचकृत पंच महाभूतों से फिर अलग अलग सत्वगुण से समष्टि वेष्टि ज्ञानेन्द्रिया, और सम्मिलित सत्वगुण से समष्टि वेष्टि अंतकरण की उत्पत्ति होती है, और रजोगुण से कर्मेन्द्रिया और प्राण सम्मिलित रजोगुण से उत्पन्न होता है। तो जो समष्टि प्राण तथा समष्टि बुद्धि है वो हिरण्यगर्भ की उपाधि मानी जाती है, समष्टि सूक्ष्म शरीर। जैसे ही वो उत्पन्न हुआ ईश्वर के द्वारा, तो उसमें अहम अभिमान कर लेता है वह पूर्व कल्प का जो साधक था। जैसे हम लोगों का शरीर ईश्वर उत्पन्न करते हैं, उसमें हम अपने पूर्व कर्म के अनुसार फिर अहम अभिमान कर लेते हैं, शरीर तो बनाते हैं ईश्वर, और उसमें अहम अभिमान मम अभिमान शरीर संबंधी में कर लेते हैं हम, और फिर उसके कर्ता भोक्ता बन जाते हैं। ऐसे ही वह हिरण्यगर्भ बन जाता है पूर्व कल्प का साधक मनुष्य। इस कल्प में जैसे ही समष्टि बुद्धि की और समष्टि प्राण की उत्पत्ति हुई तो बन गया हिरण्यगर्भ। उसमें उस जीव ने अभिमान कर लिया। वो पहले मनुष्य ही था तो अपने यहां पूर्ण स्वातंत्र्य है, क्या बनना है आपको, मनुष्य से देवता बनने की भी स्वतंत्रता वेद ने दी है। इतनी स्वतंत्रता किसी अन्य धर्म के शास्त्रों में नहीं है। ब्रह्म बनने की भी स्वतंत्रता है, वो भी साधना वेद बताते हैं। आप मनुष्य हैं, जीव हैं, तो शिव कैसे बन सकते हो अपने वास्तविक स्वरूप को जान करके? आपको यदि पूरे संसार का अधिपति बनना है, हिरण्यगर्भ बनना है, तो उसकी साधना भी है। आज जो हिरण्यगर्भ है उसका मय के रूप में चिंतन करो तो अगले कल्प में आप भी हिरण्यगर्भ बनोगे। तो वही मनुष्य आज हिरण्यगर्भ बन करके प्रकट हुआ, मान लो उसे यहां पर प्रजापति शब्द से लिया जा रहा है। तो यह कल्प जैसे प्रारंभ हुआ, ईश्वर ने हिरण्यगर्भ की उपाधि को उत्पन्न किया अपंचकृत पंच महाभूतों से, तो उसमें उस जीव ने अहम अभिमान कर लिया, हिरण्यगर्भ बन गया। वह प्रजा कामो प्रजा, वही प्रजापति में प्रजापति शब्द का अर्थ है। और फिर जैसे पूर्व कल्प के इस हिरण्यगर्भ के कर्मों ने ईश्वर के उपाधि में एक संकल्प कराया, एको अहम बहुश्याम प्रजाय, ऐसा उसका प्रारब्ध इसके अंदर भी इच्छा उत्पन्न कर देता है। क्या इच्छा कर देता है? प्रजा काम। वो जब हिरण्यगर्भ की उपासना कर रहा था तो उसने पहले हिरण्यगर्भ बनने की इच्छा होने से पहले, हिरण्यगर्भ बनने के लिए साधना करने से पहले हिरण्यगर्भ बनने की इच्छा हो जाएगी ना उसके अंदर। और क्यों इच्छा होगी? कुछ न कुछ विशेषता देखी होगी ना हिरण्यगर्भ में। और हिरण्यगर्भ की विशेषता का, पूरे जीवन का, स्वरूप का, अधिकार का, सामर्थ्य का वर्णन वेदों में है। यदि ईश्वर के बाद में किसी के पास कोई सामर्थ्य है इस संसार में कुछ करने का, तो वो है हिरण्यगर्भ में। वो संसार के स्वामी है, अध्यक्ष है, पूर्ण अधिकार उनके पास ईश्वर ने दिए हैं। तो उन सब अधिकारों को वेदों के अनुसार देख करके उसे हिरण्यगर्भ बनने की इच्छा हुई थी। और हिरण्यगर्भ स्थूल प्रपंच का निर्माण करते हैं, ऐसा वेदों ने बताया हुआ है। पंचीकरण प्रक्रिया से स्थूल जगत, स्थूल संसार का निर्माण हिरण्यगर्भ ही करते हैं। और ये सब सामर्थ्य बनाने का, नष्ट करने का हिरण्यगर्भ के पास है। ये वेदों से जान करके उसे हिरण्यगर्भ बनने की इच्छा हुई थी। अब बन गया है हिरण्यगर्भ, वो हिरण्यगर्भ बनने की साधना करके, तो उसके अंदर फिर जैसे पूर्वकल्प के हिरण्यगर्भ ने सृष्टि बनाई थी, ऐसे सृष्टि बनाने की इच्छा होती है। इसलिए कहा कि प्रजा काम। वो जो इस कल्प का हिरण्यगर्भ है, उस प्रजापति, उसके अंदर प्रजा को बनाने की इच्छा होती है, प्रजा काम हो जाता है। वो देखता है कि मैं अकेला हूं और अनेकों को प्रकट करूं, ऐसे ईश्वर की तरह ही इसके अंदर भी इच्छा हो जाती है। और इच्छा होने के बाद वो क्या करते हैं? अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए स तपो अतप्यता, उसने तप किया। यहां तप है ज्ञान, और वो ज्ञान कौन सा? ब्रह्म ज्ञान नहीं, अपितु हिरण्य गर्भ कैसे सृष्टि का निर्माण करते हैं ये पहले ही अध्ययन वो कर चुके हैं वेदों का साधक अवस्था में, और वैसा ही चिंतन कर चुके हैं, इसलिए पूर्व कल्प में उपासना करते समय जो हिरण्यगर्भ के कार्यों का ज्ञान था उनको, और वैसा ही संस्कार था, उन संस्कारों को प्रकट कर दिया बुद्धि में और पहले से प्राप्त ज्ञान का स्मरण किया। ये सतपो अतप्यत इससे बताया गया है कि वर्तमान कल्प के हिरण्यगर्भ अभी अकेले हैं। ईश्वर तो हिरण्यगर्भ को निर्माण करके और स्थूल प्रपंच को बनाने के लिए रॉ मटेरियल के रूप में अपंचकृत पंच महाभूत कहो या सूक्ष्म भूत कहो दे करके कहते हैं, देखो ये रॉ मटेरियल है, अरे तुम हो, इससे अब तुमको संसार बनाना है। 84 लाख प्रकार के ये शरीर और उनके जीवित रहने के लिए अपेक्षित अन्नादि का निर्माण तुम्हें करना है, ये बता देते हैं और फिर स्वयं छिप जाते हैं। फिर हिरण्यगर्भ स्वयं ही अब इससे हम कैसे बना लें ये चिंतन करते हैं, और चिंतन करके फिर प्रकट करते हैं ये पूरे संसार को। अभी तो रॉ मटेरियल मात्र आया है हिरण्यगर्भ के पास, और उससे मनुष्य शरीर बनने हैं, 84 लाख शरीर बनने हैं, वो इतने जल्दी तो बनेंगे नहीं, बराबर 8.5 क्या 1 मिनट ज्यादा ही हुआ है, कम से कम 24 घंटे तो लगेंगे ना, 23 घंटे, हाँ 7:30 बजे तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी उसकी। हरिओम।